अचानक सौरव बजाज के भेजे हुए रिपोर्टर की वजह से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बिगड़ चुका था। हालांकि आर्यांश जो रिकॉर्ड करवाना चाहता था वो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था और उसके कहने पर रिपोर्टर्स ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन दीवा और उसके बीच का रिश्ता और भी बिगड़ गया था। दीवा किसी भी हाल में उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि आर्यांश उसके बिना तड़प रहा था। फिलहाल आर्यांश के लिए यही राहत की बात थी कि दीवा ने उसे उसके पेरेंट्स की हेल्प करने की इजाज़त दे दी थी। इस तमाशे के बाद दीवा घर लौट आई थी, तो वहीं आर्यांश सार्थक के साथ मिलकर सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने के बारे में प्लान कर रहा था। आर्यांश इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। उसने जो फेक कंपनी प्लान की थी उसके सारे सबूत पहले ही मिटा दिए गए थे। ऐसे में नवीन गोयंका को बेगुनाह साबित करना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला था। सर, आपने डॉक्टर गोयंका की हेल्प करने के बारे में सोच तो लिया है, पर गलती से भी उस फेक कंपनी का सच सामने आ गया तो डॉक्टर गोयंका आपसे और नाराज हो जाएंगे, सार्थक ने गंभीर आवाज में कहा। वो और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। आर्यांश ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, जो कहना है सीधे सीधे कहो। मुझे डर है कि गोयंका इंडस्ट्रीज को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में कहीं उस फेक कंपनी का सच मीडिया और बाकी लोगों के सामने ना आ जाए। वो आपसे जुड़ी हुई थी, सार्थक ने नजरें नीचे करके कहा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सब कुछ बिना प्लान के किया है, आर्यांश ने बौहें उठाकर कहा। उसने कुछ फाइल्स निकाली और सार्थक के सामने करते हुए आगे बोला, उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी डिटेल्स विलियम रॉबिन्सन के नाम से हैं। वो आदमी एक गैम्बलर है और अगर उसे पैसे मिले तो वो अपनी ये जिंदगी तो क्या अगली जिंदगी भी जेल में बिताने के लिए तैयार है। सार्थक ने बिना कुछ कहे हां में सिर हिला दिया था। उसके मन में और भी कई सवाल थे, बस वो खुलकर कह नहीं पा रहा था। दीवा पहले ही जानती है कि ये सब मैंने किया है, किसी को भी लाकर खड़ा कर दो तब भी वो यकीन नहीं करेगी, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होकर मेरा बताया हुआ काम करो, विलियम रॉबिन्सन को आगे लेकर आओ और उसके खिलाफ सारे सबूत प्लांट कर दो। मुझे अगले 15 दिन में गोयंका फैमिली का नाम इन सबसे क्लियर चाहिए, आर्यांश ने उसे ऑर्डर देते हुए सख्त आवाज में कहा। सार्थक ने सारी फाइल समेटी और वहां से चला गया था। वहीं उसके जाने के बाद आर्यांश अपनी कुर्सी पर लीन हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने दीवा का चेहरा आ गया था जब वो थोड़ी देर पहले उसके साथ होटल रूम में था और वो रो रही थी। आर्यांश की बौहें सिकुड़ गई थी और उसके चेहरे पर भी दर्द उतर आया था। अच्छा तरीका निकाला है तुमने मुझे सजा देने का, तो तुम जान गई हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम इसका फायदा उठाकर मुझे तड़पाने वाली हो। सिर्फ एक गलती, एक रात की सजा जब मैंने तुम्हें सबके सामने ठुकरा दिया था, क्या तुम वो रात भूल नहीं सकती दीवा, आर्यांश ने गहरी आवाज में कहा। दीवा के बिना उसके लिए हर एक पल बिताना मुश्किल साबित हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोयंका फैमिली अपने घर लौट आई थी। पूरे रास्ते में दीवा ने एक शब्द भी नहीं कहा था और ना ही नवीन और प्रार्थना ने उससे कुछ पूछा था। प्रार्थना तो दीवा से उसके और आर्यांश के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती थी, पर नवीन ने ही उसे रोक रखा था। पूरे रास्ते दीवा ने नवीन और प्रार्थना से नजरें फेर रखी थीं। उसे डर था कि अगर उन्होंने उसके और आर्यांश के रिश्ते का सच पूछा तो दीवा उनसे ये बात और नहीं छुपा पाएगी कि आर्यांश ने सच में उनकी कंपनी को डूबने से बचाया था। देखा जाए तो उनका रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट पर टिका हुआ था। ये बात अलग थी कि दीवा ने कभी नहीं सोचा था कि उसे प्रपोज करने और इतने सपने दिखाने के बाद आर्यांश इस तरह उसका दिल तोड़ देगा। जैसे ही वे घर पहुंचे, दीवा गाड़ी से निकलकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी प्रार्थना ने उसे रोक लिया था। उसे आराम करने दो प्रार्थना, काफी कुछ हुआ है, नवीन ने प्रार्थना को डांटते हुए कहा। काफी कुछ हुआ है तभी हमें इससे बात करनी चाहिए, कब तक इसके हेल्थ इश्यूज और ये बात सोचकर कि इसे बुरा लगेगा आप अपने सवालों को दिल में दबा कर रखेंगे, प्रार्थना ने बिफरते हुए कहा। उसने नवीन की तरफ देखा और आगे बोली, ये भी तो जब वापस लौटी थी तब हमारी सिचुएशन खराब होने के बावजूद हमसे शहर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, हमने भी इसे साफ साफ बताया, तो अब इसका फर्ज बनता है कि ये उस लड़के के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई को छुपाए नहीं। अगर आपसे नहीं देखा जा रहा है तो आप रूम के अंदर चले जाइए नवीन, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, दीवा अपनी नजरें नीचे करके खड़ी हुई थी। प्रार्थना ने नवीन को झिड़कने के बाद दीवा की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ दीवा, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में, तुमने उसकी हेल्प लेने से इनकार कर दिया और यहाँ एक अनजान इंसान आकर हमें बता रहा है कि उसने अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में किस तरह सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की थी, क्या यही वजह थी कि तुम हॉस्पिटल में थी। हालांकि प्रार्थना अपनी तरफ से सख्त होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में दीवा के एडमिट होने और उस रिपोर्टर की बातें याद आईं, प्रार्थना की आवाज़ भारी हो गई थी। वो दीवा के पास गई और सिसकती आवाज़ में बोली, तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम्हारी तकलीफें सिर्फ तुम्हारी हैं और हम तुम्हें नहीं समझेंगे, आज एक बात एकदम साफ हो गई कि अब तुम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं रहा है और इसमें टूटने की शुरुआत तभी हो गई थी जब तुम पिछले महीने अचानक घर पर हमारे साथ टाइम बिताने का कहकर वापस आई थी। दीवा से अब और अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। प्रार्थना ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था और उसे सहलाने लगी थी। नवीन ने दीवा को कुर्सी पर बैठाया और उसे पानी देकर शांत किया। दीवा का रोना कम जरूर हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। दीवा ने उनकी तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, वो कभी मुझसे प्यार नहीं करता था, वो मुझसे बदला ले रहा था। वो मेरी फ्रेंड सहर से प्यार करता था। मेरी सर्जरी पहले हुई तो उसे ये लगता था कि सहर की जान मेरी वजह से गई है। दीवा की बात सुनकर प्रार्थना और नवीन को झटका सा लगा। प्रार्थना ने दीवा की तरफ देखा और अविश्वास से कहा, तो मेरा शक सही था? मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने आर्यांश को पहले भी कहीं देखा है, बस मुझे याद नहीं आ रहा था। दीवा ने हल्के से सिर हिलाकर प्रार्थना की बात पर हामी भरी। प्रार्थना जल्दी से बोली, मुझे उससे बात करने दो, मैं उसे समझाऊंगी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो होश में भी नहीं थी और ये फैसला हम दोनों ने लिया था। तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी सर्जरी पहले करवाने के लिए हमने डॉक्टर को पैसे दिए थे। हाँ, हमने गलती की थी, पर हम सहर का इलाज करवाने के लिए भी तैयार थे। डॉक्टर उसके ट्रांसप्लांट के लिए डोनर भी ढूंढ रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही मर गई थी। दीवा, तुम हमें गलत समझ रही होगी, लेकिन सच तो ये है कि सहर जितनी ही हालत तुम्हारी खराब थी, तुम्हारी सर्जरी में वेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि तुम्हें बचपन से हार्ट प्रॉब्लम थी। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी हालत और खराब हो गई थी। अब तुम खुद बताओ कि ऐसी सिचुएशन में हम अपनी बेटी को छोड़कर किसी और को कैसे चुन सकते थे। मुझे भी अफसोस है कि सहर मौत का, नवीन ने सब कुछ समझाते हुए कहा। उनके चेहरे पर अफसोस के भाव थे। तो क्या ये सब वो सहर का बदला लेने के लिए कर रहा था? क्या हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे आर्यांश कपूर का हाथ है? प्रार्थना ने घबराहट भरे स्वर में कहा। अब तक उसे ये सब उनके गलत फैसलों का नतीजा लग रहा था, लेकिन अब तो कुछ और ही निकल कर आ रहा था।
दीवा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू साफ करते हुए कहा, सहर मरी नहीं है, वो जिंदा है और आर्यांश के कजिन ने ही उसे बचाया है। क्या? नवीन और प्रार्थना एक साथ बोले। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। अगर वो जिंदा है तो किस बात का बदला ले रहा है? क्या उसे ये सब ठीक नहीं कर देना चाहिए? प्रार्थना बोली, उसने प्रॉमिस किया है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सब सच बता दिया है, क्या मैं अब आराम करने जा सकती हूँ? मैं बहुत थक गई हूँ, दीवा ने थके हुए स्वर में कहा। उनके और ज्यादा सवालों के जवाब देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। प्रार्थना और नवीन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी दीवा अपनी जगह से उठी और कमरे में जाने लगी। दीवा ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि पीछे से नवीन ने सख्त आवाज में कहा, हमारे साथ जो भी हुआ वो तो वो ठीक कर देगा, लेकिन तुम्हारा क्या दीवा? क्या वो तुम्हारे दिल को फिर से जोड़ पाएगा? दीवा का चेहरा दूसरी तरफ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। काश वो किसी को बता पाती कि उसके दिल को जोड़ना तो दूर की बात है, आर्यांश हर दिन उसे एक नई तकलीफ दे रहा था। दीवा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उनकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ और खुश भी कि सहर जिंदा है। इतना कहकर दीवा अपने कमरे में चली गई। वहीं प्रार्थना को आर्यांश पर गुस्सा आ रहा था। उसने नवीन की तरफ देखकर कहा, वो हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने पहले ही काफी कुछ झेला है और ऊपर से उसी की बेस्ट फ्रेंड की मौत का इल्ज़ाम वो उस पर लगा रहा है। नवीन इन सबके बीच बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनके मन में एक तूफान सा उठा हुआ था। दीवा से सच जानने के बाद उन्होंने पिछली घटनाओं को नोटिस किया, जहां बार बार आर्यांश कीवा के सामने आ रहा था। काफी देर चुप रहने के बाद अचानक नवीन ने प्रार्थना की तरफ देखा और घबराहट भरे स्वर में कहा, प्रार्थना, हमें उसकी मदद नहीं चाहिए और ना ही मुझे सब कुछ ठीक करना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रार्थना हैरानी से बोली, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमें इस जगह और आर्यांश कपूर से हमेशा के लिए दूर जाना होगा, वरना वो हमारी बेटी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, नवीन ने परेशान स्वर में कहा। वो काफी आगे का सोच पा रहे थे, जो प्रार्थना अब तक नहीं समझ पाई थी। लेकिन दीवा ने बताया ना, सहर जिंदा है, तो वो अब हमसे बदला नहीं लेगा और उसने प्रॉमिस भी किया है कि वो सब ठीक कर देगा, फिर हमें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? प्रार्थना ने उलझन भरी निगाहों से नवीन की तरफ देखकर कहा। उसे नवीन का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसे दीवा से प्यार हो गया है, और अगर उसे दीवा नहीं मिली तो वो पता नहीं अपनी दीवानगी में किस हद तक चला जाएगा। सहर के जिंदा होने का सच जानने के बावजूद दीवा के पास हॉस्पिटल में नौकरी नहीं है। वो घर पर आया था तब दीवा ने उससे उसकी हेल्प नहीं ली, और आज जो भी हुआ उससे यही लग रहा है कि वो दीवा को छोड़ने वाला नहीं है। अगर वो दीवा के पास रहा तो दीवा को सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं मिलेगा, और हमें उसकी जिंदगी के लिए ये कठिन फैसला लेना होगा, नवीन ने खुद को सख्त करके कहा। अब प्रार्थना को सब समझ आ गया था। हालांकि सब कुछ छोड़कर जाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन नवीन की बातें उसे भी डरा रही थीं। प्रार्थना ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। नवीन खुश थे कि कम से कम प्रार्थना अब दीवा के बारे में सोचकर सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। जहां एक तरफ आर्यांश सब कुछ सही करने में लगा हुआ था, तो वहीं गोयनका फैमिली ने दीवा के बेहतर फ्यूचर के लिए आर्यांश से दूर एक गुमनाम जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था।